पृष्ठ संख्या 48, चतुर्थ अध्याय, प्राचीन दर्शन, एरिस्टोटल से अगस्टाइन तक। एरिस्टोटल के बाद ग्रीस का राजनीतिक और सामाजिक जीवन अव्यवस्थित हो गया। देश कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था, जो परस्पर ईर्ष्या द्वेष रखते थे और लड़ते थे। 146 ईसा पूर्व में ग्रीस अपनी स्वतंत्रता खोकर रोमन राज्य का एक प्रांत बन गया। पर्शिया के द्वारा पूर्वी विचारधारा भी इधर वेग से बहने लगी। इन सब कारणों से दर्शन को तटस्थ विचार न मानकर जीवन का साधन माना गया। दर्शन का धर्म से सामंजस्य होने लगा। दर्शन का काम रूढ़ियों से रहित धार्मिक और नैतिक जीवन के लिए विचारों की पृष्ठभूमि तैयार करना हो गया। दूसरे व्यक्तिवाद का प्रबल उत्थान हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख दुख का निर्माता समझा जाने लगा। यदि बाह्य जीवन में सुख शांति न मिल सके तो कम से कम आंतरिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक शांति का अनुभव कर सकता है। तीसरे संदेहवाद की धारा बड़े वेग से बहने लगी। मानव का अपनी बुद्धि से विश्वास उखड़ने लगा। ज्ञान की सीमाएं बनने लगी। विज्ञानवाद की प्रतिक्रिया के रूप में ईश्वर, जीव और जगत की सत्ता में संदेह होने लगा और इस जीवन में जो भी और जैसा भी सुख मिल जाए वही प्राप्तव्य समझा गया। रोमन विजेता पूर्ण व्यवहारिक थे। उनकी दर्शन की कल्पनाओं में अभिरुचि नहीं थी। अतः जीवन परमार्थ से हटकर व्यवहार की ओर केंद्रित होने लगा। अगला शीर्षक है एपिक्यूरस। 341 ईसा पूर्व से 270 ईसा पूर्व इन्होंने एथेंस में अपनी संस्था स्थापित की, जिसमें स्त्रियों और दासों को भी सम्मिलित किया गया। घनिष्ठ मैत्री इसका आदर्श था और एपिक्यूरस इसमें देवतुल्य थे। उनके अनुसार सुख ही जीवन का एकमात्र और चरम लक्ष्य है। इसमें वे एरिस्टिपस के अनुयायी थे। यद्यपि इस सुख में इंद्रियज सुख को उचित स्थान प्राप्त था, तथापि एपिक्यूरस का आदर्श आंतरिक शांति द्वारा उत्पन्न अलौकिक दार्शनिक सुख था। सांसारिक सुख दुख निवृत्ति के लिए होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दुख और भय से निवृत्त चाहता है और इसलिए सुख की ओर प्रवृत्त होता है, किंतु असली सुख वह है जहाँ दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो। पृष्ठ संख्या 49। अतः असली सुख आंतरिक दार्शनिक शांति है, जो सांसारिक सुख दुख के द्वंद से ऊपर है। यदि मनुष्य सार्वभौम सम्राट भी बन जाए तो भी क्या वह दुखों से छूट सकता है। इच्छाओं और कामनाओं का त्याग ही असली सुख है। साधारण सांसारिक सुखों का निर्लिप्त होकर अनुभव करते हुए इच्छाओं को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इच्छा ही दुख की जननी है। धार्मिक अंधविश्वास दुख को भयंकर रूप से बढ़ाते हैं। ईश्वर की मानव रूप में कल्पना, विविध देवी देवताओं की कल्पना, उनका मानव जीवन में पक्षपात, पूर्ण हस्तक्षेप करना और इसी प्रकार के अन्य कई बेहूदे अंधविश्वास संसार को पीड़ित करते हैं। अतः एपिक्यूरस ने भौतिक विज्ञान के अध्ययन को निष्पक्ष विचारों के लिए बहुत आवश्यक माना है। इसके लिए उन्होंने डेमोक्रिट्स की शरण ली। विश्व में भौतिक परमाणुओं के अतिरिक्त और कुछ नित्य नहीं है। ईश्वर और देवी देवता आदि कोरी कल्पनाएं हैं। मानव की आत्मा भी भौतिक परमाणुओं के संयोग से बनती है और मृत्यु के बाद नष्ट हो जाती है, क्योंकि यह संयोग नष्ट हो जाता है। मृत्यु से भय करना बेकार है। यह सत्य है कि मृत्यु के बाद सांसारिक सुख नहीं रहते, किंतु यह भी तो उतना ही सत्य है कि मृत्यु के बाद कोई दुख भी नहीं रहते। स्वयं एपिक्यूरस और उनके प्रारंभिक शिष्यों के लिए आदर्श सुख द्वंद्वातीत शांति ही थी, किंतु बाद में इंद्रिय सुखों को ही आदर्श मानकर लोग अपने को एपिक्यूरस के अनुयायी कहने लगे। एपिक्यूरस के लिए सुख और नैतिक बल एक ही बात थी। यह सत्य है कि उन्होंने सांसारिक सुखों की अवहेलना नहीं की, किंतु उनका लक्ष्य इच्छाओं से छुटकारा पाना ही था। बाद में यह संप्रदाय शुद्ध चार्वाक संप्रदाय बन गया और इंद्रियों द्वारा लभ्य सुख ही जीवन का आदर्श माना गया। अगला शीर्षक है स्टोइक मत, द स्टोइक्स। इस मत की प्रतिष्ठा जीनो, जो कि पार्मेनाइडीज के प्रसिद्ध शिष्य इलिया के जीनो से भिन्न है, जिनका समय 336 ईसा पूर्व से 264 ईसा पूर्व है, एथेंस में आकर की। इन पर पूर्वी विचारधारा की छाप है। एपिक्यूरस ने एरिस्टिपस और उनके अनुयायी सिरेनाइक्स का अनुकरण करके सुख को जीवन का लक्ष्य बनाया था। जिन्होंने साकेटीज और एंटीएस्थनीज तथा उनके अनुयायी सिनिक्स का अनुकरण करके चरित्र बल को जीवन का लक्ष्य बनाया। दोनों में इस बात का साम्य है कि दोनों ही इच्छाओं और कामनाओं के दमन की लक्ष्य प्राप्ति का साधन मानते हैं। पृष्ठ संख्या 50। एपिक्यूरस के लिए सुख और चरित्र बल एक ही वस्तु थे, किंतु उनके अनुयायी आगे चलकर इंद्रिय सुख के ही उपासक बन गए। अतः स्टोइक मत ने नैतिक जीवन के प्रेमियों को शीघ्र ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सिनिक, जिससे शायद सनकी शब्द बना है, लोगों का आदर्श भी चरित्र बल था, किंतु उनमें इंद्रिय दमन का और संसार के सुख को छोड़कर तपस्वी जीवन बिताने का निवृत्त मार्ग प्रधान था। स्टोइक लोगों ने इस निवृत्त मार्ग के साथ प्रवृत्त मार्ग का भी सामंजस्य किया। एपिक्यूरस के लिए भौतिक प्रमाण ही एकमात्र तत्व थे। स्टोइक लोगों के लिए तत्व विशिष्टाद्वैत स्वरूप वैश्यरूप्य है। इस वैश्यरूप्य को चाहे ईश्वर कहा जाए चाहे प्रकृति कहा जाए, बात एक ही है, तत्व विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। स्टोइक लोगों ने एरिस्टोटल के अनुसार संसार को द्रव्य और स्वरूप का सम्मिश्रण माना है। एरिस्टोटल ने ईश्वर को विशुद्ध स्वरूप और प्रकृति को विशुद्ध द्रव्य माना था, किंतु स्टोइक लोगों ने द्रव्य और स्वरूप के पारमार्थिक द्वैत को मिटाकर इनको एक ही तत्व के दो रूप माने। अतः एक ही तत्व को स्वरूप की दृष्टि से ईश्वर और द्रव्य की दृष्टि से प्रकृति कहा जा सकता है। यह जगत ईश्वर का शरीर है। ईश्वर इस जगत में अंतर्यामी है, इससे भिन्न नहीं। ईश्वर परमात्मा या जगत आत्मा या लोगोस, द यूनिवर्सल प्न्यूमा और सोल है। जीवात्मा उनका अंश है और संसार में उनके ज्ञान का सीमित उपभोग करता है। मुक्ति के समय जीव आत्मा और परमात्मा का तादात्म्य हो जाता है और उनमें कोई भेद नहीं रहता। जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। वह ईश्वर का अंग है और उसका लक्ष्य ईश्वर की ओर अभिमुख होना है। मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा स्वरूप होना अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करना है और चरित्र बल इनका साधन है। जगत के अंतर्यामी समस्त द्वंद्वों से रहित है। मानव को अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मज्ञान प्राप्त करना है। निष्काम भाव से निर्लिप्त होकर संसार में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए ईश्वर अभिमुख होना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। मानव विश्व का निवासी है क्योंकि मानव ईश्वर का अंश है और ईश्वर जगत अंतर्यामी है। स्टोइक मत और ईसाई धर्म में ईश्वर के स्वरूप के संबंध में भेद होने पर भी स्टोइक मत का आगे चलकर ईसाई धर्म पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उत्तरकालीन स्टोइक विद्वानों में सम्राट नीरो के शिक्षक सेनेका, जिनकी मृत्यु 65 वर्ष में, एपिक्टेटस 50 से 138 और सम्राट ऑरेलियस 161 से 180 प्रसिद्ध है। पृष्ठ संख्या 51 हेडिंग है संदेहवाद स्केप्टिज्म। इसके प्रतिष्ठापक पाइरो 365 ईसा पूर्व से 275 ईसा पूर्व हैं, जो एरिस्टोटल के समसामयिक थे। विविध दार्शनिक मतों के पारस्परिक भेदों को देखकर पाइरो ने कहा कि मानवीय बुद्धि के लिए निश्चयात्मक ज्ञान असंभव है, न निर्विकल्प स्वानुभूति, न सविकल्प बुद्धि और न इंद्रिय अनुभूति ही निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न कर सकती है। ज्ञान के क्षेत्र में संदेह का साम्राज्य अखंड है। प्रत्येक मत के खंडन में और मंडन में सबल युक्तियां दी जा सकती हैं। अतः निश्चयात्मक ज्ञान भ्रम है। संदेहवादियों में कार्नेडिज 215 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व और सेक्सटस एम्पिरिकस 200 से 250 ईसा पूर्व के लगभग, जिन्होंने कार्य कारण भाव का खंडन किया और जिनका डेविड ह्यूम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा, मुख्य हैं। अगला शीर्षक है संग्रहवाद इक्लेक्टिसिज्म। रोमन लोगों के आधिपत्य के कारण संग्रहवाद का प्रचार हुआ। रोमन लोग व्यवहारिक थे और उनको दार्शनिक मत मतांतरों के कलहों में रुचि नहीं थी। सभी ग्रीक दार्शनिकों से अच्छी अच्छी बातें लेकर उनका संग्रह किया जाने लगा। सिसेरो इस कार्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अगले हेडिंग है अलेक्जेंड्रिया के फाइलो 25 ईसा पूर्व से 40 ईस्वी ने, जो रोम में यहूदीय के दूत थे, प्लेटो के विचारों का यहूदी विचारों से समन्वय किया। प्लूटार्क 45 ईस्वी के लगभग ने पाइथागोरस और प्लेटो के सिद्धांतों का प्रचार किया। अगला हेडिंग है प्लेटो के मत का पुनरुद्धार या नियो प्लेटोनिज्म। प्लोटाइनस 204 से 270 ने प्लेटो से अत्यधिक प्रभावित होकर अपने दर्शन की स्थापना की। प्लोटाइनस का जन्म मिस्र या इजिप्ट में हुआ था और वे एमोनियस सेकस के शिष्य थे, जिनको प्लेटो के नवीन मत का संस्थापक माना जाता है। प्लोटाइनस महान दार्शनिक और रहस्यवादी संत थे। उन पर मिस्र और पर्शिया के विचारों का और उनके द्वारा शायद भारतीय विचारों का भी प्रभाव पड़ा है। प्लोटाइनस प्लेटो के अनन्य भक्त हैं। प्लेटो के साथ साथ प्लेटो के पूर्ववर्ती ग्रीक दार्शनिकों का पाइथागोरस, हेरेक्लाइट्स, पार्मेनाइडीज और साकेटीज का प्रभाव भी उनमें स्पष्ट प्रतीत होता है। कुछ प्रभाव एरिस्टोटल का भी पड़ा है। प्लोटाइनस की विचारधारा ग्रीक दर्शन की अंतिम विचारधारा है। ईसाई धर्म का वेग से प्रचार होने के कारण और राजकीय सत्ता का आश्रय मिलने कारण कालांतर में प्लेटो का नवीन मत टिक नहीं सका। पृष्ठ संख्या 52। किंतु इस मत का प्रभाव स्वयं ईसाई धर्म पर भी अत्यधिक पड़ा। वस्तुतः प्लोटाइनस के प्रभाव को ईसाई धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। स्वयं संत अगस्टाइन के अनुसार समस्त दर्शन में प्लेटो का दर्शन अत्यंत पुनीत और ज्वलंत है। प्लोटाइनस ग्रीक दर्शन के अंत और ईसाई दर्शन के आदि हैं। संत अगस्टाइन के विचार से प्लोटाइनस में प्लेटो का पुनर्जन्म हुआ, किंतु बर्ट्रेंड रसेल के अनुसार प्लोटाइनस के प्लेटो उतने ही जीवित नहीं जितने असली प्लेटो थे। रसेल के विचार से प्लोटाइनस ने प्लेटो के केवल प्रारंभिक विचारों को ही अपनाया, किंतु यह कथन सत्य नहीं है। प्लेटो की बाद की रचनाओं के विचारों की छाप भर प्लोटाइनस में अस्पष्ट झलकती है। हाँ, जिस विकृति रूप में रसेल प्लेटो को देखते हैं उस रूप में प्लोटाइनस ने नहीं देखा। प्लोटाइनस ने प्लेटो के असली भावों को अपनाकर अपने दर्शन में व्यक्त किया है। यह तो अनिवार्य है कि प्लोटाइनस के अपने व्यक्तित्व और विचारों का सम्मिश्रण भी उनमें हो। व्यवहार और परमार्थ का भेद प्रायः सभी दर्शनों और धर्मों में किसी न किसी रूप में आ ही गया है। किसी में अस्पष्ट है, किसी में गुप्त। पार्मेनाइडीज में व्यवहार या ओपिनियन और सत्य या ट्रुथ का भेद है। हेरेक्लाइटस में अवनत मार्ग या वे डाउन और उन्नत मार्ग वे अप का भेद है। प्लेटो में इंद्रिय अनुभूति या सेंस और विज्ञान आइडिया का, छाया या शैडो और प्रकाश का भेद है। स्पिनोजा में अनित्य टेम्पररीज और नित्य अटर्निटेटीज का भेद है। कांट में व्यवहार या फिनोमिना और परमार्थ नोमिना का भेद है। हेगल में भ्रम इल्यूजन और तत्व रियलिटी का भेद है। ब्रेडले में व्यवहार अपियरेंस और परमार्थ रियलिटी का भेद है। भारतीय दर्शनों में वेदांत में व्यवहार और परमार्थ का बौद्ध दर्शन के शून्यवाद में समृद्धि और परमार्थ का तथा विज्ञानवाद में परतंत्र का और परिनिशम्न का, जैन दर्शन में पर्याय और द्रव्य का या स्यादवाद और केवल ज्ञान का भेद प्रसिद्ध है। धर्मों में भी वैदिक धर्म में सुर और असुर का, बौद्ध धर्म में बुद्ध और मार का, जैन धर्म में जीव और उदग्गल का, पारसी धर्म में ओर्मुज़द और अहिरमान का, ईसाई धर्म में ईश्वर और शैतान का तथा इस्लाम में अल्लाह और शैतान का भेद प्रसिद्ध है। पृष्ठ संख्या 53। पाश्चात्य दर्शन में इस व्यवहार और परमार्थ के भेद का सर्वप्रथम अत्यंत सुस्पष्ट और युक्तियुक्त प्रतिपादन करने का श्रेय प्लेटो को है। प्लोटाइनस ने भी अपने दर्शन का आधार इसे ही बनाया है। प्लोटाइनस के अनुसार परम तत्व एकमेव अद्वितीय या द वन द अलोन है। यह शुद्ध सत है जो निर्गुण निर्विकार और निराकार है। यह अंतर्यामी अर्थात इमानेंट भी है और परात्पर ट्रांसेंडेंट भी है। यह प्लेटो का विज्ञान स्वरूप शिव तत्व आइडिया ऑफ द गुड है। सृष्टि इसका शरीर है और यह सृष्टि की आत्मा है। इसके बाहर कुछ नहीं है, अतः यह ही सब कुछ है। यह सर्वे खलु इदम अर्थात द आल है। यह सब जगह एवरीवेयर है। यह संपूर्ण विश्व में अंतर्यामी है, किंतु विश्व इसको सीमित नहीं कर सकता। विश्व इसका शरीर है, अतः यह विश्व रूप है। विश्व की आत्मा होने से यह अंतर्यामी विश्व आत्मा है और स्वतः यह परात्पर है, अनिर्वचनीय है। इसे इंद्रियां और बुद्धि नहीं पकड़ सकती। शुद्ध सत या प्योर एंस, शुद्ध चित, प्योर नोस और शुद्ध आनंद प्योर ब्लिस होते हुए भी यह निर्गुण और अनिर्वचनीय इनडिटर्मिनेट है। यह स्वानुभूत के निर्विकल्प साक्षात्कार का विषय है। यह मौन अपरोक्ष अनुभूति द्वारा प्राप्य है। विज्ञान भी इसे पूर्ण रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि यह विज्ञानों का भी विज्ञान है। इसका सर्वोत्तम निर्वचन नेति नेत अर्थात निगेटिव है। यह पूर्ण अद्वैत स्वरूप है। सृष्टि में और परम तत्व में तादात्म्य संबंध है, अतः सृष्टि भी अनिर्वचनीय अर्थात इनएक्सप्लिकेबल है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि सृष्टि तत्व का स्वभाव है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति या इमानेशन है। सृष्टि तत्व में से वह बह निकली है। तत्व उस प्याले के समान है जिसका अनंत जल उसमें न समाकर निरंतर वह निकलता है। जैसे जलप्रपात से निरंतर जल गिरता रहता है, वैसे ही तत्व की पूर्णता से यह सृष्टि गिरती रहती है। किंतु इन उपमाओं से यह नहीं समझना चाहिए कि सृष्टि तत्व से अलग हो जाती है या तत्व से भिन्न भी उसकी सत्ता हो सकती है। तत्व एक पूर्ण और अविभाज्य है। सृष्टि के रूप में वह वस्तुतः खंडतः होकर नहीं बिखरता। प्लोटाइनस का परम तत्व प्लेटो के विज्ञान स्वरूप शिव तत्व के समान और वेदांत के परम ब्रह्म के समान है। सृष्टि में इस परम तत्व की अभिव्यक्ति चार रूपों में होती है। ये रूप हैं ईश्वर, नौज, विश्वात्मा, वर्ल्ड सोल, जीवात्मा, सोल और जड़ जगत बॉडी। पृष्ठ संख्या 54। इनमें से प्रत्येक अपनी ज्योति से ऊपर से लेता है और नीचे भेजता है। ज्योति ज्यों ज्यों नीचे उतरती है उतनी ही क्षीण हो जाती है। इस तारतम्य में प्रत्येक रूप अपने ऊपर के रूप का अनुकरण या इमिटेशन करता है और नीचे के रूप द्वारा अनुकरण किया जाता है। ब्रह्म रूप अनिर्वचनीय परम तत्व विशुद्ध विज्ञान स्वरूप अर्थात प्योर कॉन्शियसनेस है। जब वह स्वयं अपना बोध करता है या सेल्फ कॉन्शियस, तो ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है। ईश्वर परम तत्व की दृष्टि या विजन है। प्लोटाइनस ने ईश्वर को परम तत्व की दिव्य दृष्टि, दिव्य विज्ञान, डिवाइन इंटेलेक्ट या दिव्य प्रकाश बताया है। यह परम तत्व का प्रतिबिंब है। विश्वात्मा इस दिव्य विज्ञान रूप ईश्वर का प्रतिबिंब है। यह सूर्य के समान है। इसकी किरणें जीव आत्माओं के रूप में फूट पड़ती हैं। विश्व आत्मा से जगत की अभिव्यक्त होती है। परम तत्व की ज्योति इसमें अत्यंत मंद हो गई है। जब तक जीव की अविद्या है तब तक संसार है, किंतु व्यवहार की दृष्टि से जगत को ठुकराना अनुचित है। जगत का निराकरण करना अच्छे व्यक्ति का लक्षण नहीं है। आत्मा ईश्वर की पुत्री है। विज्ञान स्वरूप होने से आत्मा नित्य है, किंतु अविद्या के कारण जीव आत्माओं में भेद प्रतीत होता है। मृत्यु के उपरांत जीव का पुनर्जन्म मानना उपयुक्त है, क्योंकि अपने कर्मों के फल तो जीव को भोगने ही होंगे। जीव आत्मा इस जगत में आकर जड़ जगत के पदार्थों के मोह में फंस जाती है। अतः शरीर के मोह को सांसारिक अनित्य पदार्थों के मोह को छोड़े बिना छुटकारा नहीं हो सकता। जीव आत्माएं उन बालकों के समान हैं जिनको जन्म लेते ही उनके माता पिता से दूर रखकर पाला पोसा गया हो और जो अपने तथा अपने माता पिता के स्वरूप को भूल गए हों। अतः जीव को तुरंत ही परम तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता। इसके लिए साधना करनी पड़ती है। जब दिव्य ज्योति उतरती है तो उसको ग्रहण करके जीव अपने बंधन से छुटकारा पा सकता है। जीव आत्मा का स्वरूप भी परम तत्व का ही स्वरूप है। दोनों अद्वितीय हैं। जीव और परम तत्व का आकर्षण सहज है। यह आकर्षण अद्वितीय की ओर उड़ान या द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन है। स्वरूप ज्ञान होने पर आत्मा और परम तत्व का पूर्ण तादात्म्य एब्सोल्यूट आइडेंटिटी हो जाता है। पृष्ठ संख्या 55। यह दिव्य आनंद की अवस्था स्वानुभूत का विषय है, वाणी और बुद्धि का नहीं। प्लोटाइनस के बाद भी उनके अनुयायी एथेंस में एकेडमी को अपना केंद्र बनाकर दार्शनिक विचार प्रस्तुत करते रहे, किंतु ईसाई धर्म के विपरीत होने के कारण रोमन सम्राट जस्टिनियन ने सन 529 में एकेडमी को बंद कर दिया और उसके दार्शनिक विचारों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार ग्रीक दर्शन की स्वतंत्र विचारधारा का यूरोप में अंत हुआ। अगला शीर्षक है ईसाई पादरियों के दार्शनिक विचार। ईसाई धर्म के प्रारंभ काल में उसके अनुयायी ईसा मसीह द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को ही दिव्य वचन मानकर अपने जीवन को उनके उपदेशों के अनुरूप बनाने के प्रयत्न में लगे रहे। धार्मिक विश्वास ही उनकी मान्यता थी और उन्होंने तर्क के शरण लेना उचित नहीं समझा, किंतु कालांतर में जब ईसाई धर्म का वेग से प्रचार होने लगा और यूरोप के विद्वान और दार्शनिक भी उस धर्म को स्वीकार करने लगे, तो ईसाई धर्म की मान्यताओं को तर्क से सिद्ध करने का कार्य भी होने लगा। इसके लिए एरिस्टोटल की प्रधान रूप से शरण ली गई। ग्रीक दर्शन के अन्य विचार भी, विशेषतः प्लेटो और प्लोटाइनस के वे विचार जो ईसाई धर्म के विपरीत नहीं पड़ते थे, स्वीकार कर लिए। प्लोटाइनस का ईसाई धर्म पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि दोनों ही विचारों में भेद होने पर भी ईश्वर अभिमुख थे और ईश्वर तथा जगत के संबंध की, पाप की स्थिति और उसके कारण की एवं दुख से मुक्ति पाकर दिव्य जीवन बिताने की समस्याओं पर विशेष रूप से विचार करते थे। ईसाई धर्म के अनुसार यह जगत ईश्वर की सत्य सृष्टि है। ईश्वर इसके ऊपर दिव्य लोक में बसते हैं। वे परम पिता और परम कारुणिक हैं। ईसा मसीह उनके पुत्र हैं। ईसा मसीह के उपदेशों के अनुरूप चलकर जीव इस दुख से छूटकर परम पिता के पास जा सकते हैं। जीव आत्मा अमर और शाश्वत है, क्योंकि ईश्वर की प्रतिकृति है। इन सिद्धांतों की पुष्टि तर्क से होने लगी और इन्होंने धीरे धीरे ईसाई धर्म के दर्शन का रूप ले लिया। चर्च की मान्यताओं का स्वरूप बनने लगा। इस कार्य में शताब्दियां लग गईं। मध्य युग में जाकर चर्च के धार्मिक विश्वास स्थिर हो गए। मध्य युग के पहले जिन पादरियों ने इस कार्य में योग दिया, उनमें सबसे अंतिम और सबसे महान संत अगस्टाइन थे। अगला हेडिंग है संत अगस्टाइन 354 ईस्वी से 430 ईस्वी। अगस्टाइन का जन्म अफ्रीका में हुआ था। माता ईसाई थी। युवा अवस्था में विलासी जीवन बिताने के बाद वे रोम चले गए और वहां अध्यापक हो गए। पृष्ठ संख्या 56। मिलान नगर में संत एम्ब्रोस का उन पर काफी प्रभाव पड़ा। प्लेटो और प्लोटाइनस का भी अध्ययन उन्होंने किया। बाद में वे ईसाई बन गए। अपने पुराने जीवन से उन्हें विरक्ति हो गई और उन्होंने धार्मिक जीवन प्रारंभ किया। प्रतिभा उनकी प्रखर थी। वे हिप्पो के पादरी या बिशप ऑफ हिप्पो बने और मृत्यु पर्यंत उन्होंने ईसाई धर्म और चर्च की पूर्ण सेवा की। उनके बाद में होने वाले दार्शनिक पादरियों पर उनका भारी प्रभाव पड़ा है। संत अगस्टाइन में दो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, दार्शनिक और धार्मिक। दर्शन में उन्होंने जगत को हटाकर आत्मा को केंद्र बनाया और आत्मा के अमरत्व, स्वतः सिद्धत्व, ज्ञान स्वरूपत्व और संकल्प स्वातंत्र का समर्थन किया। आत्मा ज्ञाता है और उसकी सत्ता स्वतः सिद्ध है। इसका निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि जो निराकरता है वही आत्मा का स्वरूप है। यदि मैं अपना निषेध भी करूँ तो भी मेरी सत्ता अनिवार्य है। या सी फैलरसम, आधुनिक युग के संस्थापक डेकार्ते के, मैं ज्ञाता हूँ अतः मेरी सत्ता अनिवार्य है, अर्थात कैगिटो अर्गो सम। इस सूत्र पर संत अगस्टाइन का प्रभाव स्पष्ट है। ईश्वर की सत्ता के लिए भी उन्होंने प्रमाण दिए हैं। आत्मा संकल्प और कर्म करने में स्वतंत्र है। पादरी बन जाने पर उनकी धार्मिक प्रवृत्ति बलवती हो गई और वे चर्च की प्रतिष्ठा करने में लग गए। ईश्वर और आत्मा को मिलाने वाली श्रृंखला चर्च ही है। चर्च की प्रभुता सार्वभौम होनी चाहिए। प्रथम मानव आदम को ईश्वर ने संकल्प और कर्म का स्वातंत्र दिया था, किंतु शैतान के बहकाने में आकर उसने निषिद्ध फल खा लिया। तभी से पाप और दुख संसार में छा गए। आदम के पाप से उनकी संतति सारी मानव जाति कलुषित हो गई। उसका संकल्प स्वातंत्र छिन गया। पाप में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो गई। इस पाप और दुख से बचने का एकमात्र उपाय ईश्वर की करुणा है। ईश्वर की करुणा या प्रसाद का वितरण चर्च बपतिस्मा द्वारा ईसाई बनाकर करती है। चर्च को ही इसका एक अधिकार है। चर्च ईश्वर का नगर या सिटी ऑफ गॉड है। सांसारिक नगर से इस दिव्य नगर का संघर्ष होता है, किंतु अंत में विजय दिव्य नगर की ही होती है। पाप पर धर्म की विजय निश्चित है। चतुर्थ अध्याय समाप्त।